इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को आहत करने का नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
कहानी रोगी गाना पर कृष्णकांत के साथ
आगे आइए। मैं कृष्णकांत एक बार फिर लेकर आ गया हूं कहानी रोकी सिर्फ गाना पर। केविन ने अपने सफर में कई तरह के उतार चढ़ाव, कई तरह की रूह का सामना करके एक बात समझ लिया था कि किसी रूह से आजादी ऐसे ही नहीं मिल जाती। रूह चक्र को समझना उतना आसान भी नहीं है। केविन के घर में उसके नजदीक एक रूह है जिसे वो बात करना चाहता है। जैसे वो नजदीक आना चाहता है, केविन को कई रूहों ने परेशान किया। कई रूहों ने खुद मुलाकात भी की, पर हर बार एक रूह केविन के करीब ही क्यों रहती थी? आखिर क्यों किसी रूह को पता चल रहा था कि केविन के पास कुछ शक्तियां हैं जिसे वो रूहों की दुनिया में प्रवेश कर सकता है? तमाम तरह के सवाल थे और तमाम तरह की उलझने। क्या आपने कभी किसी आत्मा से बात करने की कोशिश की है? क्या कभी भी आपने एहसास नहीं किया कि आप सो रहे हो और आपके कोई करीब है? नहीं। आप खुद से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। जब आप रात को सोते वक्त ये महसूस करते हैं कि आप अपने बिस्तर में जकड़े हो या कोई आपके पास है, उस वक्त सच में कोई रूह आपको देख रही होती है। और ये मेरा सच नहीं, आपका विज्ञान बताता है। केविन ने एक बार अपने घर की उस आत्मा से बात करने की कोशिश भी की, पर सपना काफी था। फिर केविन को पता चला कि रूह ऐसे ही बात नहीं करती, उसे मनाना या गुस्सा दिलाना पड़ता है। अभी भी रूह चक्र के कई सवाल थे जो केविन की समझ से बाहर थे। केविन इन तमाम सवालों के जवाब खोज रहा था। उसे ये जवाब जानना जरूरी था ताकि वो उस रूह और उस जैसी तमाम रूहों से लड़ सके, उन्हें मुक्ति दे सके। आपके मन में भी तो कई सवाल होंगे कि आत्मा क्या है, प्रेत क्या है, क्यों कोई रूह ऐसे इस दुनिया में अटक जाती है। कई सवाल हैं। केविन उनका जवाब लेने जा रहा है। आइए आपको भी ले चलता हूं। केविन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा सी उसके मन को परेशान किए जा रही थी। इन रूह चक्रों में फंस के केविन अपने सांसों को खो चुका था। आज कई दिन के बाद उसे प्रकृति की बाहों में सुकून सा मिल रहा था। पूरा रास्ता सुनसान सा था, बस कुछ कुछ चिड़ियों की चहचहाट पुकारती हुई मुस्कुरा रही थी। केविन चलता जा रहा था, फिर उसने सोचा क्यों ना थोड़ी हल्की वाली दौड़ भी की जाए। तभी उस दौरान उसे एक औरत सामने चलती नजर आई जो उसके आगे चल रही थी। केविन ने सोचा कि उसे परेशान नहीं करेगा और चलता ही जाएगा। वो उसको पीछे छोड़ आगे की ओर हुआ। तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो पलटा, अब वो औरत दूसरी दिशा में चल रही थी। केविन को ये कुछ अटपटा सा लगा। उसने सोचा उससे जाकर बात करे, फिर इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। फिर से वही औरत अचानक उसके सामने चली आती है। केविन उसके पास पहुंचा, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा,
आप कौन है?
उस औरत का चेहरा पलटा। वो एक भयानक सी शक्ल थी जिसने कहा,
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
ये बोलते ही उस औरत का शरीर राख सा हो गया और केविन के हाथ में बस कपड़े का एक गठरा ही बच गया। केविन के लिए ये भी एक झटका सा था। फिर वो अपने घर आ गया और सोच में डूब गया। केविन ने अपनी कई सारी रिसर्च के दौरान एक बाबा का नाम जाना था जिसको अघोर साधना का ज्ञान मिला था, पर उस बाबा तक पहुंचना भी तो आसान नहीं था। अघोर साधना भी रोज चक्र की तरह ही एक अनसुलझी दुनिया है। केविन ने मान लिया था कि उस बाबा से मुलाकात जरूर करेगा, जिसके लिए उसने डॉक्टर विजय से मुलाकात किया। डॉक्टर विजय को केविन अपनी रिसर्च के दौरान एक बार मिला भी था। उन्हें इस अघोर साधना में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने बताया भी था कि वो एक अघोरी को भी जानते हैं जिसे लोग बाबा जीतनाथ के नाम से भी पुकारा करते हैं। केविन उनकी तलाश में जा पहुंचा डॉक्टर विजय के पास।
अब हेलो सर, कैसे हैं आप?
हाय केविन, बहुत ही दिन बाद आए हो, कहाँ गायब हो गए थे?
सर दरअसल मैं अपने ही कुछ अनसुलझी सवालों में खोया था। खैर
क्या हुआ?
सर वो आपने बहुत पहले एक बाबा का नाम बताया था। हाँ शायद बाबा जीतनाथ।
तो क्या हुआ?
दरअसल मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
क्या मैं जान सकता हूँ क्यों?
लाइफ कुछ उलझी सी है सर, और मैं चाहता हूँ कुछ सवालों के जवाब अब मुझे मिल ही जाए। मैं रूह आत्मा प्रेत चुड़ैल जिन हर किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा उस बाबा से मिलना बहुत जरूरी है सर, प्लीज सर।
अरे इट्स ओके। देखो आज रात 12 बजे शहर के बाहर वाले शमशान चलना, मुलाकात वहीं पर हो पाएगी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
कहानी रोकी, गाना पर कृष्णकांत के साथ।
केविन को तो ये लग रहा था कि जैसे मंजिल उसके करीब है, और अब बस उसे एक तेज सी दौड़ लगानी है। पर अघोरी से मिलना, उसकी साधना को समझना आसान काम नहीं। साथ में ये भी तो ध्यान देना होगा कि वो रूह जो केविन को कुछ भी नहीं जानने देना चाहती, वो अपना खेल इतनी आसानी से बिगाड़ने देगी। खेल तमाशे बहुत हैं इस दुनिया में, पर उस खेल का कोई मुकाबला नहीं जहां पर आपको पता ही नहीं कि सामने वाला आखिर है कौन। हर तरफ एक रूह है, हर तरफ एक राज है, खौफ की दुनिया है, रूहों ने कब्जा जमाया है। दरअसल वो रात के बाशिंदे हैं जिन्हें पसंद है तुम्हारे खौफ की चादर। इस मुलाकात के बाद केविन ने अपने सवालों और उलझनों का पुलिंदा तैयार किया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब वो बाबा जीतनाथ से मिलेगा। उसने अपने कुछ इक्विपमेंट्स को भी साथ में लिया था, उनकी भी जांच कर रहा था वो। पर आज दिन भर से घर का माहौल कुछ गिरा गिरा सा था। ऐसा लग रहा था कि हर वक्त कोई केविन के पीछे खड़ा हो, कोई अनजानी हवा। अचानक उसके कान के पीछे फूंक मार के चली जाती थी। उसे एहसास हो रहा था कि कोई है जो चाहता है कि वो खौफ में आ जाए। पर केविन अब तक रूह चक्रों के भंवर में इतना तो जान ही चुका था कि आखिर उसे कब किसी रूह का सामना करना चाहिए। दरअसल केविन इस खेल को बच्चे का खेल समझ के खेले जा रहा था। दरअसल वो बस उस रूह को अपने कमजोर होने का एहसास दिला रहा था ताकि जब भी वो उसे बुलाने की कोशिश करे वो अपने घमंड में उसके सामने हो। इसके साथ ही वो अपने वक्त को काट रहा था। वैसे भी घर में बैठे बैठे ये खेल खिलवाड़ के बीच वक्त हो चुका था शमशान जाने का। केविन जाने को तैयार था। उसने अपना बैग उठाया और सिक्के को हवा में उछाला। अभी उसने सिक्का अपने जेब में रखा ही था कि उसे एहसास हुआ किसी साए का। वो जैसे ही मुड़ा एक गुलदस्ता दरवाजे से आके टकरा गया। केविन बस मुस्कुराया और बोला,
बस कुछ और ही देर का खेल है समझो।
इसके बाद वो अपने घर से निकला और डॉक्टर विजय से मिलने शमशान पहुंचा। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने कई बार ऐसा हुआ कोई जानवर ने आने की कोशिश की, पर वो सिर्फ एक अर्जन ही थी केविन को रोकने की तैयारी में। केविन को मानो कोई रोक रहा हो। केविन किसी तरह शमशान पहुंचा, वहां डॉक्टर विजय से मुलाकात किया। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। केविन बहुत ज्यादा ही उत्तेजित था। उसने डॉक्टर विजय से कहा,
हेलो सर, क्या बाबा जी आ गए हैं सर, या कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा?
केविन, केविन, तुम बहुत ही ज्यादा उत्तेजित लग रहे हो। ये शमशान है, खुद से ना कोई आता है और ना ही जाना चाहता है। जिसको जाना रहना होता है वो वहां मौजूद रहता है।
मैं कुछ समझा नहीं सर।
अभी तुम समझोगे भी नहीं। आओ, तुम्हारी मुलाकात कराऊं बाबा अजीतनाथ से। आओ उस लाश की तरफ जो आधी चली और आधी बुझी सी है, आओ और मिलो बाबा अजीतनाथ से।
पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? अघोरी बनने का ये मतलब नहीं कि मैं अपना रूप हर समय बदल कर रखूं, हर समय लाश को चबाता रहूं। तुम सबकी यही तकलीफ है ना? तुमने ईश्वर का, शैतान का, इंसान का, सबका एक रूप निश्चित कर रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम जो सोचते हो और जैसे सोचते हो वही सत्य है। ऐसा नहीं है केविन, ऐसा नहीं होता। तुम्हें समझना होगा तुम्हारे आसपास हर वक्त कोई ना कोई रूह जरूर रहती है, जो तुम्हें दिन के उजाले में भी दिखती है। बस तब तुम उससे खौफ नहीं खाते, एक जिंदा इंसान समझ के इग्नोर कर देते हो। सबका अपना चलावा है, विजय ही जीत है, जीत ही विजय।
क्या? पर आप तो डॉक्टर हैं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, अघोर साधना के प्रयोग से किसी रूह पे कब्जा पाया जा सकता है क्या?
अघोर केविन, अघोर का अर्थ होता है एक घंघोर तप। ये एक महायज्ञ है जिसमें इंसान अपने जीवन को झोंक देता है। उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, हर किसी को सम्मान देने की भावना पैदा करती है अघोर साधना। और जहां तक रही बात किसी रूह को कब्जे में करने की, तो उनके लिए तांत्रिक विधि है। केविन, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, पर याद रहे इन आत्माओं और शक्तियों का इस्तेमाल एक बार ही होगा, क्योंकि साधना मेरी है और तुम सिर्फ भिक्षुक हो। याद रखना, जब मैं तुम्हें मंत्र बता रहा होऊंगा, कुछ ना कुछ शक्तियां तुम्हें भ्रम दिलाने आएंगी, पर तुम ध्यान मुझ पे ही रखना केविन। आओ शुरू करे यह घोर महायज्ञ।
केविन ने वही किया जो डॉक्टर विजय ने उसे करने को कहा था। वो लगातार उनकी बात को ध्यान से सुनने और समझने जा रहा था। बीच बीच में उसे एहसास होता जैसे कि डॉक्टर विजय उसे मदद के लिए बुला रहे हैं, पर वो अपने ध्यान में मगन था। एक दो बार केविन को ये भी लगा कि उस जलती चिता की आग अचानक ही धड़क उठी है और लाश उस तक पहुंच गई है, पर फिर भी ध्यान बना रहा और केविन ने उस मंत्र को प्राप्त कर ही लिया। इस मंत्र की प्राप्ति के बाद केविन चल पड़ा अपने घर की तरफ। डॉक्टर विजय ने उसे कहा कि वो उनके अघोर साधना की बात किसी से ना बताए, वरना लोग सिर्फ चमत्कार पे यकीन करेंगे और दवा का साथ भी छोड़ देंगे। केविन अपने घर के सामने था। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे। केविन को यूं लगा जैसे उसके घर के अंदर कोई और ही चल रहा है, पर वो बाहर से ऐसे ही घर के अंदर झांक नहीं सकता था। उसने खिड़की की तरफ जाके कुछ झांकने का फैसला किया। दरवाजे पे दस्तक देने से पहले केविन खिड़की पे पहुंचा और आंख लगा के देखने लगा। वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, आंखों को गड़ाए हुए था। अचानक से खौफ का चेहरा खिड़की से आ गया। खिड़की का कांच टूट सा गया था। केविन ने अपना चेहरा बचा लिया। अब शायद रू केविन पे नाराज है, क्योंकि अब तक जो खेल चल रहा था वो हमले में तब्दील हो चुका था। केविन को अपने घर में जाना ही होगा, उसे उस रू का सामना करना ही होगा। क्या केविन अपनी सांसों को सलामत रखता हुआ इस रूह के नजदीक जा पाएगा? ये तमाम बातें बताऊंगा जब आप सुनेंगे कहानी रूह की, मेरे यानी कृष्णकांत के साथ सिर्फ गाना पर।
कहानी रूह की, गाना पर कृष्णकांत के साथ,
क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।